पिछले पाठ में दो प्रश्न किए गए थे। एक तो चैत्रह गच्छति की तरह जो है चैत्रम गच्छति प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि चैत्र भी जो है संयोग रूपी फल का आश्रय है, कर्म संज्ञा होनी चाहिए। और दूसरा प्रयागात गच्छति की तरह प्रयागम गच्छति भी होना चाहिए, क्योंकि गच्छति में जैसे फल संयोग फल होता है वैसे विभाग भी फल होता है, तो विभाग फल का आश्रय प्रयाग है, इसलिए उसकी भी कर्म संज्ञा होनी चाहिए। उसमें पहले प्रश्न का समाधान भी पहले पाठ में हो चुका था, कहा कि ये बात सही है कि चैत्र भी फलाश्रय होता है और फलाश्रय होने के कारण कर्म संज्ञा की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके साथ साथ स्वतंत्र कर्ता से कर्तृ संज्ञा की भी प्राप्ति होगी, और दोनों की प्राप्ति होने पर विप्रत से दे परम कार्यम के नियम से पर संज्ञा होती है कर्तृ संज्ञा, वह कर्तृ संज्ञा कर्म संज्ञा को बाद करके होगी, इसलिए कर्तृ संज्ञा होने के कारण प्रथमा होगी तो चैत्र गच्छति ही होगा, चैत्रम गच्छति नहीं होगा। अब दूसरा जो प्रश्न बच गया था प्रयागात गच्छति वाले में, तो उसमें प्रश्नकर्ता ने यही कहा था कि गमन क्रिया का फल संयोग भी होता है और विभाग भी होता है, तो विभाग रूपी फल का आश्रय होने के कारण प्रयागात के बदले कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया करके प्रयागम गच्छति होना चाहिए। इसका समाधान ये है कि ये शंका इसलिए हो रही है कि आप गम धातु का अर्थ जो है ना संयोग और विभाग दोनों को फल के रूप में मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गम धातु का अर्थ जो है ना संयोगानुकूल व्यापार ही होता है, संयोग विभागानुकूल व्यापार अर्थ नहीं होता है। तो गम धातु का अर्थ जो है ना विभाग नहीं है, वह किसी अन्य धातु का अर्थ होगा, और जबकि फल संज्ञा ये कर्म संज्ञा के लिए जो समभिव्याहृत धातु है जैसे गम धातु है, इसमें प्रयागात कासिम गच्छति में समभिव्याहृत धातु, समभिव्याहृत धातु माने समीपोच्चारित धातु, तो समीपोच्चारित धातु कासिम गच्छति में गच्छत गम धातु है, गम धातु का जो है ना फल वह संयोग ही माना जाएगा, इसलिए संयोग आश्रय जो काशी है उसी की कर्म संज्ञा होगी, विभाग जो है इस गम धातु का फल नहीं है, उसका अगर आश्रय प्रयाग है भी तो भी कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क्रियाजन्य फल के आश्रय की ही कर्म संज्ञा होती है, ऐसा नहीं है समभिव्याहृत क्रियाजन्य फल का जो आश्रय होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पर जो समभिव्याहृत क्रिया है गमन क्रिया, उसका फल विभाग नहीं है, इसलिए विभाग आश्रय प्रयाग की कर्म संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर दूसरे प्रश्न का भी समाधान किया गया। अब मैं बीच में कुछ अंश को छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। ये जो कर्म कारक है ये सात प्रकार का कर्म कारक होता है। वो कौन कौन सा कर्म कारक है, उसका भेद क्या क्या है, और उसका लक्षण क्या है, और इसके उदाहरण क्या हैं, इन सब बातों को जो है अब मैं बता रहा हूँ। तो आपकी पुस्तक में कुछ अंश के बाद लिखा है एतच्च सप्तविधम, एतच्च सप्तविधम माने कर्म जो है वह सप्तविधम सात प्रकार का होता है। कौन कौन कर्म होता है तो एक बार पहले मैं नाम सुना देता हूँ, फिर मैं कारिका में ही देखूँगा। एक होता है निर्वर्त्य कर्म, दूसरा होता है विकार्य कर्म, और तीसरा होता है प्राप्य कर्म। निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, और ये तीनों जो होते हैं ये ईप्सिततम कर्म होते हैं। तो ईप्सिततम कर्म जो होगा वह तीन प्रकार का होगा, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, ठीक है, तीन हो गए। अब चार जो और कर्म के भेद हैं वो अनिप्सित कर्म जो होते हैं ना उनके चार भेद हैं। तो पहले ऐसा समझ लीजिए कि कर्म के पहले दो भेद करिए, एक ईप्सिततम कर्म और दूसरा अनिप्सित कर्म। ईप्सिततम कर्म जो है वह तीन प्रकार का होता है, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, और अनिप्सित कर्म जो है वह चार प्रकार का होता है। एक होता है उदासीन कर्म, एक होता है द्वेष्य कर्म, एक होता है संज्ञान्तर के द्वारा अनाख्यात कर्म। क्या होता है? संज्ञान्तर के द्वारा अनाख्यात कर्म, और चौथा होता है अन्य पूर्वक कर्म। तो इस तरह से अनिप्सित कर्म चार प्रकार के हुए, ईप्सित कर्म ईप्सितम कर्म जो है तीन प्रकार के हुए, तो चार जोड़ तीन बराबर सात, तो सात प्रकार के कर्म होते हैं। ये बात सिद्धांत कौमुदी में नहीं बताई गई है, ये यहाँ नई बात है, इसको आप लोग समझिए। हो सकता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कर्म के कितने भेद हैं, कौन कौन हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। चलिए तो कारिका में कहते हैं कि निर्वर्त्यं च विकारजं च प्राप्यं च इति त्रिधा मतम। त्रिधा माने ये तीन प्रकार हैं, निर्वर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म, और ये तीनों जो हैं तच्च ईप्सिततमम कर्म, ये जो तीनों कर्म हैं ये ईप्सिततम कर्म होते हैं। और चतुर्धा अन्यत्तु कल्पितम, अन्यत माने अनिप्सित कर्म जो है वह चतुर्धा, वह चार प्रकार का होता है, वह कौन कौन है तो कहते हैं उदासीन्येन यत् प्राप्यम, कहा कि उदासीन जो कर्म है वह कर्म, इसके बाद यच्च कर्तु अनिप्सितम, जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित हो, और संज्ञातर माने उदासीन्येन यत् प्राप्यम माने उदासीन कर्म हो गया, और यत् प्राप्यम यच्च कर्तु अनिप्सितम, जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित है अर्थात द्वेष्य कर्म हो गया। तीसरा संज्ञान्तरे अनाख्यातम, जो संज्ञान्तर से अनाख्यात हो माने अन्य संज्ञाओं के द्वारा जो अविवक्षित हो, और यद्यत् चाप्यन्य पूर्वकम, और जो अन्य पूर्वक हो अर्थात उपसर्ग आदि पूर्वक हो, तो इस तरह से चार भेद जो हैं वो अनिप्सित कर्म के होते हैं। अब ये इनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि निर्वर्त्य किसको कहते हैं, विकार्य किसको कहते हैं, ये सब तो आगे की कारिका में है। यत असज्जायते, जो असत रूप से उत्पन्न होता है, सदवा जन्मना यत प्रकाशते, अथवा सत रूप से जो है जन्म लेने पर जो प्रकाशित होता है, तन्निर्वर्त्यम, वह कर्म जो है वह निर्वर्त्य कर्म कहलाता है। इसको आप समझने के लिए मैं थोड़ा और बताता हूँ कि जो प्रकाशित होने से पूर्व नहीं था और प्रकाशित होने पर ही प्रतीति के पथ पर आया है, ऐसा कर्म जो है निर्वर्त्य कर्म होता है। जैसे घटम करोति है, तो घटम करोति में मिट्टी के होते हुए भी आकार रूप में जो घट है, उस घट का कुंभकार उसकी रचना करता है, तो कुंभकार जो आकार प्रदान करता है मिट्टी में, उससे आकार प्रदान करने से पूर्व वह घड़ा उसमें नहीं था। जब कुम्हार ने उस मिट्टी में आकार प्रदान किया तब जाकर के जो है घट उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर घटम करोति में घट जो है यह निर्वर्त्य कर्म है। तो वही कहा यत असत जायते, जो असत रूप में उत्पन्न होता है वह, अथवा जन्मना यत प्रकाशते, जो असत से उत्पन्न होता है अर्थात जो पहले घट नहीं था अब बाद में घट उत्पन्न हुआ है, अथवा जो घट पहले से मिट्टी में विद्यमान था लेकिन कुंभकार की रचना के बाद वह घट रूप में प्रकाशित हुआ है, ऐसा मतलब जो पहले से हो अथवा जो अब उत्पन्न हो गया हो, इन दोनों ही स्थिति में जो कर्म होता है वह निर्वर्त्य कर्म होता है। इसका उदाहरण है घटम करोति। अब दूसरा कर्म है विकार्य कर्म। तो विकार्य कर्म जो है वो भी द्वेधा कर्म व्यवस्थितम, विकार्य कर्म भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं, तो एक प्रकार होता है जिसमें कि उसकी प्रकृति ही पूरी की पूरी बदल जाती है, जैसे काष्ठम भस्म करोति, लकड़ी को भस्म बनाता है। अब वहाँ पर भस्म की प्रकृति क्या है, लकड़ी, उस लकड़ी की सारी प्रकृति ही बदल जाती है तब जाकर के भस्म रूप में वो बन जाता है। तो वही कहा कि प्रकृति उच्छेद संभूतम किंचित काष्ठादि भस्मवत, माने जिस कर्म में प्रकृति का उच्छेद हो जाए, प्रकृति का पूरी तरह से नाश हो जाए, एक नया ही रूप उत्पन्न ले ले, जैसे काष्ठ से भस्म बनता है, तो उसको हम कहते हैं विकार्य कर्म। और दूसरा भी भेद है विकार कर्म का, उसमें क्या होता है कि चीज वही रहती है, जो प्रकृति रहती है वो प्रकृति रहती है, केवल उसका आकार प्रकार बदल जाता है। तो वही कहा किंचित गुणांतर उत्पत्तिया, माने उसमें कुछ गुण, नए गुण आ जाते हैं, लंबा, गोला, चौड़ा, ये सब गुण उसमें आ जाता है, जैसे सुवर्णादि विकारवत, जैसे सोना है तो सोना का जो है ना अलग अलग आकार देते हैं, तो अलग अलग आभूषण बन जाता है, कुंडल बन जाता है, नाक वाला आभूषण बन जाता है, गले वाला बन जाता है, लेकिन प्रकृति जो है स्वर्ण वाली प्रकृति वो उसमें रहती ही रहती है, केवल उसमें नए गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो विकार्य कर्म है वह दो प्रकार का होता है। एक विकार्य कर्म में प्रकृति का पूरी तरह से जो है विनाश हो जाता है, एक नया रूप आता है, जैसे काष्ठ से भस्म बनना। और दूसरा विकार्य कर्म होता है जिसमें कि प्रकृति वही रहती है, उसमें नए गुण आ जाते हैं, उसका आकार प्रकार खाली बदल जाता है, जैसे कि सुवर्ण से कुंडल आदि बनाना। तो ये दोनों जो हैं विकार्य कर्म होते हैं। और एक तीसरा कर्म होता है प्राप्य कर्म, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। तो प्राप्य कर्म किसे कहते हैं, उसके लिए कारिका में बताया गया कि क्रियाकृत विशेषानाम सिद्धिर यत्न गम्यते दर्शनात् अनुमानात् वा तत् प्राप्यमिति कथ्यते। ताकि एक कर्म ऐसा होता है जिस कर्म को देखने से अथवा अनुमान करने से उसमें क्रिया हुई है या नहीं हुई है इसकी सिद्धि का पता नहीं चलता। माने अब जैसे देखिए कोई घड़ा है, घटम पश्यति, अब घड़ा है, इस घड़े को किसी ने देखा है कि नहीं देखा है ये घड़े को देख करके आप पता नहीं लगा सकते हैं, न प्रत्यक्ष अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष ऐसा देखने से घड़ा में कुछ बदलाव तो होता नहीं है ना। तो जहाँ पर जिस कर्म में किसी क्रिया के करने से कोई बदलाव न हो, कोई परिवर्तन न हो, ऐसा जो कर्म होता है उसी का नाम है प्राप्य कर्म। अब तीन तरह के जो कर्म हैं, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, ये तीनों इप्सित तम कर्म के भेद हैं। अब तीनों का उदाहरण फिर से एक में बताता हूँ। घटम करोति इति आद्यम, ये जो निर्वर्त्य कर्म है उसका उदाहरण है घटम करोति, माने घड़ा बनाता है। ये निर्वर्त्य कर्म क्या होता है, तो जो जिसका जन्म हो, नया जन्म हो, वह निर्वर्त्य कर्म होता है। अथवा जो जन्म लेने से पहले कारण में रहता हो, जो सत्कार्यवाद की मैंने बात की थी उसके आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर, असल में इसमें ये है आप समझ ही लीजिए, ये न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों में उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। ये न्याय दर्शन वाले जो हैं ये असत्कार्यवाद को मानते हैं, और सांख्य दर्शन वाले सत्कार्यवाद को मानते हैं। ये क्या है असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद, तो न्याय का जो है असत्कार्यवाद उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है नई उत्पन्न लेती है, पहले से वो नहीं होती है। जैसे घड़ा अगर बनाया जाता है तो घड़ा पहले से नहीं रहता, इस समय में घड़ा को बनाया जाता है, इस समय में घड़ा उत्पन्न होता है, यह है असत्कार्यवाद। कार्य अगर असत हो, माने कार्य अगर पहले से न हो, तो वह हो गया असत कार्यवाद। जैसे घट रूपी जो कार्य है वह पहले से सत नहीं है, पहले से वह असत है, अब वह घट रूपी कार्य सत हो रहा है, तो यह है असत कार्यवाद। और सत कार्यवाद में क्या होता है कि उनका कहना है कि घड़ा जो है पहले से मिट्टी में था, अब जब कुंभकार उसको बनाता है उस समय में उसकी वह प्रकाशित होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, ये पक्ष है सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन वाले का। और उत्पत्ति होती है, यह है असत्कार्यवाद न्याय वालों का। तो दोनों ही पक्षों को समेटते हुए यहाँ पर कहा गया कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती हो तो भी, और कोई वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी रहती हो तो भी, ऐसी जो वस्तु है वह निर्वर्त्य कर्म है, और उसका उदाहरण, दोनों का उदाहरण घटम करोति होगा। अब दूसरा जो था विकार्य कर्म, वो विकार्य कर्म के दो भेद बताए गए थे, एक तो जिसमें प्रकृति पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और दूसरा जिसमें कि कोई मतलब प्रकृति वही रहती है, केवल उसका आकार प्रकार बदलता है। तो दोनों का उदाहरण होगा प्रकृति उच्छेद का उदाहरण होगा काष्ठम भस्म करोति, और आकार प्रकार मात्र बदलने का उदाहरण होगा सुवर्णम कुंडलम करोति। तो ये जो है दोनों जो हैं ये विकार्य कर्म के उदाहरण हो गए। अब तृतीय जो है प्राप्य कर्म, जिसमें मैंने बताया था कि देखने से या अनुमान से, उस कर्म को देखने या अनुमान से उसमें क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, कितनी बार हुई है, इसका ज्ञान जो नहीं होता वो प्राप्य कर्म होता है। इसका उदाहरण है घटम पश्यति, माने घरा को देखता है। अब देखिए कि घरे घरारूपी जो कर्म है उसको देखने से ये नहीं पता चलता कि इसको किसी ने इससे पहले देखा था या नहीं देखा था, क्योंकि देखने से घरे पर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्रिया दर्शन आदि क्रिया करने से जिस कर्म में कोई प्रभाव न हो, कोई परिवर्तन न हो, ऐसा जो कर्म होता है वह प्राप्त कर्म होता है, उसका उदाहरण है घटम पश्यति। इस तरह से तीन कर्मों के उदाहरण हो गए, और जो चार जो कर्म हैं जो कि अनिप्सित कर्म के भेद हैं, एक था उदासीन कर्म। उदासीन कर्म का मतलब होता है कि जिसको जान बूझ करके नहीं किया जाए लेकिन वह हो जाए, वह हो गया उदासीन कर्म। जैसे तृणम स्पृशति ग्रामम गच्छं तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ व्यक्ति तृण का स्पर्श करता है। अब उसका उद्देश्य तो है गांव जाना, लेकिन रास्ते में जो है ना कोई घास पात है उससे उसका स्पर्श हो जाता है। तो यहाँ जो तृणम स्पृशति में तृण है वह उदासीन कर्म है, वह इप्सित कर्म नहीं है, वह अनिप्सित कर्म है। दूसरा का द्वेष्य कर्म होता है, जैसे विषम भुंगते जहर खाता है। अब बताइए कि जहर खाना कभी इप्सित हो सकता है क्या? नहीं होगा, वह इसलिए वह द्वेष्य कर्म है। और तीसरा बताया कि संज्ञांतर से जो अनाख्यात हो, ये सूत्र है पाणिनि का एक अकथितं च, तो अकथितं च का मतलब होता है कि अपादानादि कारक से जो अविवक्षित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसी भेद के लिए यहाँ कहा गया कि संज्ञांतर से अनाख्यात कर्म होता है तीसरा भेद। इसका उदाहरण है गान दोग्धि पयाह, इसमें गाम दोग्धि में गाम जो कर्म है यह संज्ञांतर के द्वारा अनाख्यात है। अनाख्यात है माने अविवक्षित है, ये है तो अपादान, लेकिन अपादान की विवक्षा नहीं करके यहाँ पर कर्म की विवक्षा की गई और इसीलिए गाम दोग्धि में गाम कर्म बन गया। तो ये जो कर्म है ये संज्ञांतर से अनाख्यात कर्म है, अर्थात संज्ञान अपादान आदि संज्ञा से अविवक्षित कर्म है। और चौथा जो भेद है अनिप्सित कर्म का वह है अन्य पूर्वक कर्म, वह उसका उदाहरण है क्रूरम अभिक्रुध्यति। यहाँ क्रूरम जो कर्म बना है वो क्रुध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। और यह सूत्र कब कर्म संज्ञा करता है? जब क्रुध धातु और द्रुह धातु के साथ उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर उसके योग में कर्म संज्ञा होती है। तो यह जो है अन्य पूर्वक हो गया, माने अभिपूर्वक क्रुध धातु के योग में ये क्रूरम की कर्म संज्ञा हुई है। इस तरह से किसी के योग में होने वाली जहाँ पर कर्म संज्ञा हो वह कर्म जो है अन्य पूर्वक कर्म के भेद के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमने कर्म के जो सात भेद हैं उन सातों भेदों के आज के पाठ में जाना। अब अगले पाठ में हम अगली विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे।